राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी जय हो जय हो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरश्री श्रीमधीर डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय नित लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री श्री पंचतत्व की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय समवेत भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय शिल भक्ति विनोद ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। तो आज आप लोग जानते हैं बहुत ही विशेष पवित्र दिन है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव दिवस है। तो सबसे पहले तो हम ये विचार करेंगे कि जो राधा माधव का कीर्तन है ये प्रभुपाद ने इसकी प्रथा चलाई कि हमेशा प्रवचन के पहले ये कीर्तन हम करते हैं। तो ये कीर्तन, ये जो भजन है बहुत मधुर और छोटा सा भजन है, ये किसने बनाया? भक्तिनाथ ठाकुर ने बनाया। तो भक्तिनाथ ठाकुर का जो है हमारे इस आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कई कारण, एक कारण ये भी है, राधा माधव का भजन जो उनका बनाया हुआ है, ये प्रभुपाद हमेशा अपने प्रवचन के पहले गाते थे और अब ये प्रथा बन गई है कि प्रवचन के पहले ये भजन गाया जाता है। शाम की गीता की कक्षा में भी ये भजन गाया जाता है, सवेरे की भागवती कक्षा के पहले भी भजन गाया जाता है, और रविवार का भी जो दिन होता है दोपहर में जो प्रवचन होता है उसमें भी गाया जाता है। तो ये एक हमारी जो है पहचान हो गई है कि हम प्रभुपाद के अनुयायी हैं। तो प्रभुपाद के अनुयायी के रूप में हम लोग ये भजन गाते हैं प्रवचन के पहले, और प्रवचन के पहले अगर ये भजन कोई गा रहा है तो समझो कि प्रभुपाद का अनुयायी है वो, है ना, हरि बोल। तो प्रभुपाद जो है भक्तिनाथ ठाकुर के अनुयायी हैं, है ना, तो ये भजन, है ना। गौरी वैष्णव चरितामृत में इनके विषय में काफ़ी बातें लिखी हैं, अभी चलने दीजिए। इनका नाम है श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर। इनका जन्म हुआ 1838 में, 1838 में इनका जन्म हुआ, तो मतलब कितने साल हो गए इनका, इनके जन्मदिन के कितने साल हो गए, 1838 2038 में 200 साल हो जाएंगे, है ना, तो इसमें घटा दो, ये 15 चल रहा है ना, तो 15 घटा दें 38 में, 13 हुआ 23, हाँ 23 साल, 200 साल में 23 कम हुए 170 साल हो। पहले इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में, नदिया जिला, अगर जिला नदिया है तो फिर बहुत पवित्र जिला नदिया। एक संभ्रांत परिवार में प्रकट हुए थे, अपने असाधारण प्रचार और प्रचुर लेखन कार्य द्वारा इन्होंने प्रकाशित कर दिया कि श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं। दो कार्यों से ये बात पुष्ट होती है कि चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं। कौन से दो कार्य इनके? असाधारण प्रचार और प्रचुर लेखन कार्य, दो कार्य हैं। असाधारण प्रचार, असाधारण प्रचार इनका कैसे है, क्योंकि भक्तिमनोहर ठाकुर के समय में ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजी शासन था, और उस समय छपाई, पुस्तकों की छपाई शुरू हुई थी, उसके पहले पुस्तकों की छपाई नहीं होती थी, है ना। तो उन्होंने क्या किया, पुस्तकों की छपाई शुरू हुई तो वो तो जो पुस्तकें छपती थीं वो सब व्यापार के संबंध में छपती थीं, अपना विज्ञापन है, व्यापार है, है ना, और भी जो व्यर्थ का साहित्य है, भौतिक जो साहित्य है उसमें छपती थीं। इसलिए इन्होंने सबसे पहली बार श्री चैतन्य महाप्रभु की पुस्तक छापी और भेजी। असाधारण प्रचार कार्य, एक तो पुस्तक छापना, श्री चैतन्य के संदेश की पुस्तक छापना, ये बहुत बड़ा कार्य है। ये छपाई में और हाथ से लिखने में कितना अंतर है, हाथ से आप लिखते हैं, अब मान लीजिए ये पुस्तक है, आप हाथ से लिखेंगे ये पूरी किताब, हाथ से लिखेंगे एक किताब बनेगी और उस कितनी भारी हो जाएगी वो, और कितने दिन लगेंगे आपको एक किताब लिखने में, और जब छपाई होगी तो एक साथ हजारों लाखों प्रतियां छप जाएंगी, और कितने कम समय में छप जाएंगी, कितना अंतर है। और इस तरह से श्री चैतन्य का संदेश कितनी तेजी से लोगों के हाथों में पहुंचेगा, कितनी तेजी हाथों में पहुंचेगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी जब किताबों की छपाई की प्रारंभ हुई
तो इसका सबसे पहले उपयोग किसने किया? भक्ति विनोद ठाकुर ने। असाधारण प्रचार ये है, वो हमारे बहुत से साधु इस तरह के होते हैं, नहीं नहीं हम जो है बैलगाड़ी में नहीं बैठेंगे, हमारी परंपरा वही चली आ रही कि हम पैदल ही चलें, या ज़्यादा से ज़्यादा बैलगाड़ी में बैठेंगे, बस में नहीं बैठेंगे, कार में नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारी परंपरा नहीं है। तो पहले तो थी ही नहीं ना बस और कार, पहले थी ही नहीं, हवाई जहाज थे ही नहीं। तो कुछ साधु लोग हैं अपनी प्राचीन परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए कुछ नया जो साधन है अपनाते नहीं, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने नया साधन अपनाया प्रचार का। माया का प्रचार हो ही रहा है, इन पुस्तकों की छपाई के द्वारा माया का प्रचार हो ही रहा है, और बहुत तेजी से हो रहा है माया का प्रचार, है ना। तो श्री चैतन्य के संदेश का प्रचार क्यों ना किया जाए उसी साधन के द्वारा। तो असाधारण प्रचार का जो कार्य है वो कौन कर सकता है? श्री चैतन्य का जो नित्य पार्षद है वही ये कार्य प्रारंभ कर सकता है। इतना साहस, तो इन्होंने जो है ये कार्य शुरू किया। फिर इनके बाद इनके पुत्र श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस कार्य को और आगे बढ़ाया, खुद ही प्रेस अपनी स्थापित की, खुद ही प्रेस स्थापित की और खुद ही छपाई करने लगे किताबों की। और कितनी किताबें छापी, छह गोस्वामियों की किताबें भी छापी, है ना, चैतन्य चरितामृत भी छापा, श्रीमद् भागवत छापा, कितने ग्रंथ छापे भक्ति सिद्धांत। और फिर उनके बाद प्रभुपाद ने उसको और आगे बढ़ाया है, और आगे बढ़ाया, और करोड़ों करोड़ों की संख्या में अब किताबें जो है छप रही हैं, है ना। तो ये मतलब नहीं कि नहीं, प्राचीन काल में हमारे जो छह गोस्वामी थे वो किताब नहीं छापते थे तो हम भी किताब नहीं छापेंगे, तो उस समय तो किताबें छपती नहीं थी, है ना। तो असाधारण प्रचार कार्य इनका जो है भक्ति विनोद ठाकुर का ये है। और दूसरा, प्रचार की जो विधि असाधारण क्या है कि उन्होंने पूरे विश्व के जो विश्वविद्यालय हैं उनकी लाइब्रेरी में ये किताब भेजी, पूरे विश्व भर में, पूरे विश्व भर के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनकी जो लाइब्रेरी उसमें किताब भेजी। तो लाइब्रेरी में किताब भेजें तो कितने लोगों के हाथ में आएगी, कितने लोग पढ़ेंगे, ये असाधारण प्रचार की विधि है, इतना कौन सोच सकता है। उस समय भी जब भारत देश गुलाम था, भारत देश गुलाम था, उसमें भी जो है इन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर ने ये कार्य किया। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि प्रचार के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि प्रशासन किसका है किसका नहीं है, प्रचार श्री चैतन्य के संदेश का प्रचार के लिए जो है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि सरकार हमारी है या किसकी है, ना ना। तो असाधारण प्रचार कार्य किनका है? भक्ति विनोद ठाकुर का है। तो इसलिए असाधारण प्रचार कार्य। और दूसरा, लेखन कार्य, लेखन कार्य भी असाधारण, कौन कर सकता है ऐसा लेखन कार्य? रात में 10 बजे बैठते थे और सवेरे 4 बजे तक लिखते थे, कितना घंटा हुआ है? 6 घंटा। और दिन भर और भी दिन के भी कार्य हैं, घर के भी कार्य हैं, ऑफिस के भी कार्य हैं, कितना मतलब मुश्किल कार्य। रात में 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक, जैसे कोई मतलब नाइट ड्यूटी देता है रात में 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक नाइट ड्यूटी देता है तो फिर दिन भर सोता है दिन भर सोएगा इनका जो है कोई नहीं कर सकता, श्री चैतन्य के नित्य पार्षद ही ऐसा कार्य कर सकते हैं। तो दो कार्यों से ये बात पुष्ट होती है कि ये श्री चैतन्य के नित्य पार्षद हैं भक्ति विनोद ठाकुर। फिर लिखा है एक महाभागवत वैष्णव के रूप में जीवन यापन करते हुए ये अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्षों पूर्व तक गृहस्थ आश्रम में रहे। जीवन के अंतिम चार वर्ष इन्होंने मतलब त्यागा था, बाबा जी बेच लिया था, तो पूरे जीवन समझो कि गृहस्थ आश्रम में रहे और इन्होंने फिर सर्वस्व त्याग दिया, बाबा जी दीक्षा ग्रहण कर ली और समाधि दशा में राधा माधव और गौर गधर की प्रेम सेवा में तल्लीन हो गए। चार वर्ष अपने जीवन के अंतिम जो चार वर्ष हैं जब शरीर छोड़ा तो चार वर्ष तक जो है ये राधा माधव की अंतरंग लीला में और गौर गदाधर वही हैं जो राधा माधव हैं, राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में, तो गौर गदाधर की अंतरंग सेवा में तल्लीन रहे। हाँ, उस समय अपने घर वालों से बात भी नहीं करते थे, समाधि में रहते थे और घर से जो भी प्रसाद आ जाता था तो अपना खा लेते थे और बिल्कुल बात नहीं करते थे, समाधि में रहते थे। चार वर्ष उसी अवस्था में अपना शरीर छोड़ा उन्होंने। फिर प्रभुपाद के शब्द हैं इनके बारे में, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में एक उत्तरदायी सरकारी पद पर रहते हुए इन्होंने एक कृष्ण भावना भावित परिवार का पालन किया। सबसे पहली बात, सरकारी पद जिला मजिस्ट्रेट है ना, तो जिला मजिस्ट्रेट का जो सरकारी पद है किसी भारतीय को इससे बड़ा पद नहीं मिलता था अंग्रेजी सरकार में किसी भी भारतीय को इससे बड़ा पद नहीं मिलता था। तो इनको जो है ये पद मिला है जिला मजिस्ट्रेट का और इसमें इन्होंने उत्तरदायी सरकारी पद संभाला। उत्तरदायी सरकारी पद संभाला मतलब जिला मजिस्ट्रेट का जो कार्य है वो इतनी खूबी से करते थे कि जो महीनों जिस काम को महीनों लगते हैं उसका जो है ये हफ्तों में निपटारा कर देते थे, और कई हफ्ते लगे हैं तो कुछ घंटों में निपटारा कर देते थे। इतना इनका जो है दिमाग तेज था। और बाकी तो सरकारी वो जो ये जिला मजिस्ट्रेट के पद पर और वो थे अंग्रेज लोग ही थे तो उनको जो है कई हफ्ते लगते थे जिस केस को सुलझाने में, ये जो है कुछ घंटों में सुलझा देते थे। तो ये है ना, और कृष्ण भावना भावित परिवार का पालन भी किया और परिवार भी इनका 12 बच्चे थे, इनके 12 बच्चे हुए है ना, तो पत्नी हैं और 12 बच्चे हैं, इनको भी जो है पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित बनाया, अपनी पत्नी को बच्चों को भी कृष्ण भावना भावित बनाया है ना। ये सब आश्चर्य के कार्य हैं। और कृष्ण भावनामृत में लगभग 100 ग्रंथ लिखे, 100 पुस्तकें लिखी कृष्ण भावनामृत पर है ना। ये जो ग्रंथ हैं इन्होंने शायद 3 भाषा में लिखे, एक तो अंग्रेजी में लिखे और बंगाली में लिखे, हाँ तो अंग्रेजी बंगाली 2 भाषाओं में लिखे, और भी कोई हो सकता है नहीं तो 2 भाषाओं में तो लिखे, अंग्रेजी भाषा में भी लिखे ग्रंथ और बंगाली भाषा में भी लिखे ग्रंथ, 100 से अधिक ग्रंथ लिखे। साथ ही साथ इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की नाना प्रकार की सेवा की, यही इनके जीवन की विलक्षणता है, नाना प्रकार की सेवा कृष्ण की है ना। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का योग पीठ जन्म स्थान है उसका पता लगाया, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, श्री चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान का असली पता लगाया इन्होंने, तो बहुत बड़ी उपलब्धि इनकी। जैसे वृंदावन के 6 गोस्वामी थे तो उन्होंने कृष्ण की लुप्त लीला स्थलियों को खोजा, उसी प्रकार से इन्होंने केवल एक कार्य किया, श्री चैतन्य का जन्म स्थान खोजा है ना, तो इतना ही यही कार्य जो है पर्याप्त है कि ये सातवें गोस्वामी के नाम से जाने जाते हैं। और भी कारण है कि सातवें गोस्वामी, हालांकि गृहस्थ थे तो भी सातवें गोस्वामी के नाम से इनको जो है माना जाता है, सप्तम गोस्वामी। दिन भर की सरकारी नौकरी के उपरांत ये चार घंटे सोते और आधी रात में उठकर भोर होने तक लिखते रहते, ये इनका दैनिक कार्यक्रम था। ये सद प्रभुपाद के हैं। आगे ठाकुर भक्त विनोद ने श्री जाह्नवा माता की परंपरा में श्री विपिन बिहारी गोस्वामी से वैष्णव दीक्षा ली। तो दीक्षा के अनुसार इनकी जो परंपरा है वो ये नहीं है, जो हमारी परंपरा दीक्षा के अनुसार नहीं है। दीक्षा के अनुसार जाह्नवा माता की शिष्य परंपरा में विपिन बिहारी गोस्वामी से इन्होंने दीक्षा ली। शिक्षा के अनुसार, शिक्षा जो है हमारी जो गुरु परंपरा है शिक्षा के आधार पर है, तो शिक्षा के आधार पर इनके गुरु कौन है? जगन्नाथ दास बाबा जी, है ना। तो वो हमारी जो गुरु परंपरा है वो शिक्षा के आधार पर जगन्नाथ दास बाबा जी के शिष्य हैं। तदनंतर इन्होंने श्री जगन्नाथ दास बाबा जी से आध्यात्मिक प्रेरणा और निर्देशन प्राप्त किया। आध्यात्मिक प्रेरणा निर्देशन, सबसे बड़ा जो इनको निर्देशन प्राप्त हुआ जगन्नाथ दास बाबा जी से वो क्या था? श्री चैतन्य का जन्म स्थान। श्री चैतन्य का जन्म स्थान इन्होंने जो खोजा था वो बहुत से ऐसे कारण मिले कि वो पुष्ट हुआ था कि श्री चैतन्य का जन्म स्थान है, लेकिन जगन्नाथ दास बाबा जी के द्वारा भी ये बात पुष्ट हुई। उस समय जगन्नाथ दास बाबा जी शायद 120 साल के थे और 120 साल में उनकी जो आंखें हैं वो पूरी बंद हो गई थी, मतलब आंखों का जो मांस है वो लटक गया था, आंखों के ऊपर पर्दा लग गया था कि वो देख नहीं सकते थे, और टोकरी में वो उकनू बैठते थे, अपने हाथ को भी ऐसे करके, पैर को भी ऐसे करके, है ना। और भक्तों ने ठाकुर उनको टोकरी में उठा करके उस स्थान में लाए, और जैसे उस स्थान में आए तो जगन्नाथ बाबा जी उछल करके नृत्य करने लगे वहाँ, पुष्ट कर रहे हैं कि यही है जन्म स्थान, यही है, मतलब उनको प्रेम का ऐसा अनुभव हुआ। जैसे चुंबक के स्थान में लोहा है तो खींचता है ना, तो चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान वो चुंबक है और ये शुद्ध लोहा जगन्नाथ दास बाबा शुद्ध लोहा, तो वो क्या है कूद करके नृत्य करने लगे, जबकि दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो इस तरह का जो है मतलब आकर्षण प्रभाव था। भक्तों ठाकुर ने बहुत कई सौ साल पुराने भी नक्शे जो है देखे और गंगा जी की जो धारा है उसका भी पता लगाया कि कितने साल में गंगा की धारा कहाँ से कहाँ कहाँ बदली है, और वो सब जो स्थान हैं अंग्रेजों के समय के जो है वो नक्शे थे, तो 100 साल पुराना नक्शा देखा, 200 साल पुराना नक्शा देखा, गंगा जी की धारा देखी, तब पता लगाया कि 500 साल पहले श्री चैतन्य का जन्म स्थान यही था, बीच में वो गंगा की धारा के बीच में आ गया था, लुप्त हो गया था, गंगा जी की धारा के बीच में लुप्त हो गया था जन्म स्थान, है ना। तो ये सब उन्होंने पुष्टिकरण किया, लेकिन सबसे बड़ा पुष्टिकरण जगन्नाथ दास बाबा जी के द्वारा हुआ जब वो लेके आए भक्तिविनोद ठाकुर, है ना। तो इस कारण से भी जगन्नाथ दास बाबा जी भक्तिविनोद ठाकुर के क्या हुए? शिक्षा गुरु हुए। उच्च सरकारी पद, विस्तृत विद्वत्ता और आध्यात्मिक सिद्धि ने कभी भी भक्तिविनोद ठाकुर को विचलित नहीं किया। तीन चीजें हैं इनके पास, तीन चीजें हैं। पहला क्या है? उच्च सरकारी पद। सरकारी पद बहुत ऊंचा, कौन सा पद था उनका? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश का पद किसी भारतीय को मिलता नहीं है, अगर मिलता अधिक से अधिक तो यही मिलता है, एक तो ये पद। और दूसरा क्या है? विद्वत्ता, विस्तृत विद्वत्ता, कितनी किताबें लिखी। और तीसरा आध्यात्मिक सिद्धि, आध्यात्मिक साक्षात्कार भी इनको था, है ना। इन तीनों कारण से इनको किसी प्रकार से विचलन नहीं हुआ। विचलन मतलब अपने को श्रेष्ठ समझना, तो उनके अंदर जो है वो घमंड नहीं आया कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ और किसी को जो है ऐसी तुच्छ नजरों से देखें कि देखो मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, ये सब बेकार हैं, ऐसा जो है भाव इनके अंदर नहीं आया। जैसे कुंती महारानी कहती है ना, क्या कहती हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीवीर, ऊंचे कुल में जन्म हुआ मेरा है ना, तो वो दूसरों को देखने लगता है, देखो मेरा कितने ऊंचे कुल में मेरा जन्म हुआ है, ये लोग क्या है मेरे सामने। जन्म ऐश्वर्य और धन संपत्ति के कारण भी कोई सोचता है। श्रुत, श्रुत का मतलब है विद्या, ज्यादा विद्वान होने के कारण कोई सोचता है कि मैं कितना बड़ा विद्वान हूँ, ये सब जो है बेकार है। और श्री सुंदरता के कारण, तो भक्तिनाथ ठाकुर के पास ये तीन चीजें हैं, ऊंचा सरकारी पद भी है, विद्वत्ता है और आध्यात्मिक सिद्धि है, लेकिन विचलित नहीं हुए। ये सर्वदा दर्पहीन विनीत एवं सबके संग मित्रवत बने रहे हैं, मित्रवत, सबके साथ मित्र, मित्र का मतलब अपने समान आदर देना। मैत्र, गीता में भगवान ने कहा ना, अद्वेष्टा सर्व भूतानां मैत्र, कि समस्त प्राणियों के प्रति द्वेष ना हो और मैत्री का भाव, मित्रता का भाव है ना, मैत्र। इनके घर आने वाले याचक सदैव प्रसन्न और परितुष्ट होकर जाते थे। कोई मांगने आता था तो प्रसन्न होकर के, संतुष्ट होकर के जाता था। ये सर्व हितैषी थे और कभी किसी से, यहाँ तक कि प्रचार कार्य में अपने विरोधियों से भी द्वेष नहीं करते थे। प्रचार कार्य था इनका, तो प्रचार कार्य में तो विरोध होता ही है, कि जो मायावादी हैं उनसे तो विरोध होता ही है ना, लेकिन द्वेष नहीं करते थे। द्वेष करना अलग बात है, विरोध करना अलग बात है, आप समझ रहे हैं। हम प्रचार कार्य में विरोध करते हैं लेकिन द्वेष नहीं करते। द्वेष मतलब व्यक्तिगत आधार पर होता है, तो वो द्वेष नहीं करते हैं। जो वैष्णव है वो द्वेष नहीं करते, विरोध करते हैं लेकिन द्वेष नहीं करते। विरोध करते हैं सिद्धांत के आधार पर, मायावादी सिद्धांत का विरोध करना ये तो वैष्णव का कर्तव्य है, लेकिन द्वेष नहीं, व्यक्तिगत रूप से किसी से द्वेष नहीं करते थे, है ना। तो ये इनके अंदर, ये वस्तुतः इन्होंने कभी कोई ऐसा शब्द नहीं बोला जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, व्यक्तिगत रूप से किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा है इन्होंने, है ना। ये ठाकुर भक्ति में सदैव साहसी बने रहे और सबके हितार्थ कार्य करते रहे। निजी आवश्यकताओं को न्यूनतम रखते हुए इन्होंने एक सादा जीवन व्यतीत किया, अपनी आवश्यकताओं को सबसे कम, उसको कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। अपनी आवश्यकताओं को बहुत कम रखते हुए है? और सादा जीवन व्यतीत किया। एक पंडित ने कहा गीतावली में, ऐसे एक पंडित ने ये बात कही भक्ति ठाकुर के बारे में, एक विद्वान ने ऐसा कहा, गीतावली में प्रस्तुत उद्धरण में सर्वशुद्ध दिव्य गुण संपन्न श्रील भक्ति विनोद एक बद्ध जीव की भूमिका अपनाते हुए हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत में प्रगति की जाए। गीतावली भक्ति ठाकुर का जो लिखा हुआ ग्रंथ है, तो उसमें गीत ही है, भक्तुन ठाकुर ने गीत लिखे हैं, और ये गीत किस भाषा में लिखे हैं, बंगाली भाषा में लिखे हैं, है ना। तो जितने गीत लिखे हैं इन्होंने, तो इसमें अपने को ही इन्होंने मतलब सबसे नीच माना है, इस प्रकार की भावना से जो है इन्होंने गीत लिखे हैं। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने भी गीत लिखे हैं, तो अपने को ही सबसे नीच और दूषित और पतित मान करके उन्होंने श्री चैतन्य से प्रार्थनाएं की हैं नरोत्तम दास ठाकुर ने। उसी प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर ने भी जो है, जो गीतावली में गीत लिखे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर के गीत भी बंगाली भाषा में, इनके भी गीत बंगाली भाषा में, उसी प्रकार की भावना में कि मैं ही सबसे पतित हूँ, मैं ही सबसे दूषित हूँ और मुझे आप शुद्ध करिए। इस भाव से इन्होंने गीत लिखे हैं। हमें सिखाते हैं, इस तरह से हमें सिखाते हैं कि हमें क्या सब समझना चाहिए अपने को, नहीं तो हम लोग अपने को क्या सोचते हैं, है ना, कि जो भी गलती है वो इनकी है, इनकी है, इनकी, मेरी क्या गलती है, मेरे में क्या दोष है। कोई दोष अगर है तो इनके अंदर हो सकता है, इनके अंदर हो सकता है, इनके अंदर, इनके अंदर, सबके अंदर दोष हो सकता है, मेरे अंदर कोई दोष नहीं हो सकता है ना। तो ये आसुरी भाव है। लेकिन जो वैष्णव का जो भाव है वो ऐसा होता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा दोषित हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा पतित हूँ, इस भावना से इन्होंने जो है गीत लिखे हैं। लेकिन हाँ, प्रचार के समय, प्रचार के समय जो भक्त हुए वो मध्यम अधिकारी के धरातल पर आता है और वो अपने अनुयायियों को सुधारने के लिए उनके दोष दिखाता है कि तुम्हारे अंदर ये दोष हैं, ये दोष हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन जो उत्तम अधिकारी जब प्रचार कार्य नहीं कर रहा है तो वो जो है भगवान के प्रति जब अपनी भावना प्रकट करता है तो इस भाव में होता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा नीच हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा पतित हूँ। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने भगवान के प्रति जब अपनी भावनाएं लिखी हैं गीतावली में तो किस भाव से लिखी हैं कि वे खुद ही सबसे ज़्यादा पतित, सबसे ज़्यादा नीच है, जबकि वे कौन है, वे भगवान के पार्षद हैं। तो भगवान के पार्षद तो भगवान की तरह ही पवित्र होते हैं, है ना। तो इन्होंने एक बद्ध जीव की भूमिका अपनाते हुए हमें सिखाया कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत में प्रगति की जाए। बद्ध जीव, भक्तिनाथ ठाकुर ने बद्ध जीव अपने को मान करके एक गीत लिखे हैं। तो उन गीतों को जब हम गाएं और हम अपने को समझें कि हम ऐसे हैं तो हम जो है शुद्ध हो सकते हैं। अगर आप शुद्ध होना चाहते हैं तो अपने को, आपको समझना पड़ेगा कि आप अशुद्ध हैं, तभी आप शुद्ध हो सकते हैं। अगर आप कहें नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल शुद्ध हूँ और हैं आप अशुद्ध, तो आपकी अशुद्धियाँ दूर नहीं हो सकती, अशुद्धि और बढ़ेगी आपकी। तो सिखाया उन्होंने कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत में प्रगति की जाए। अब देखिए गीतावली के एक गीत का ये अनुवाद लिखा है। तुम्हें सदैव यत्न पूर्वक अपना मन श्री कृष्ण का महिमा गान करने में निमग्न रखना चाहिए। श्री कृष्ण कीर्तन द्वारा तुम्हारा मन तुम्हारे बस में आ जाएगा। अहंकार त्याग कर सदैव स्वयं को दीनहीन, अकिंचन, क्षुद्र और तृण से अधिक तुच्छ मानो। ये शिक्षा है। वृक्ष के समान क्षमावान बनने का प्रयत्न करो। समस्त प्राणियों के प्रति हिंसा का त्याग कर उनका पालन पोषण करो। जीवन पर्यंत किसी को कभी कोई कष्ट ना दो, अपितु परोपकार करो और निज सुख को भुला दो। इस प्रकार सर्वगुण संपन्न होकर प्रतिष्ठा की आशा त्याग दो और अपने हृदय को अमानी बनाओ। सकल जीवों को श्री कृष्ण का अधिष्ठान मानते हुए सर्वदा सबका आदर सम्मान करो। दैन्य, दया, अन्य जीवों का आदर और प्रतिष्ठा वर्जन करने से तुम गुणवंत बन जाओगे। कितनी चीज़ें हैं। पहली चीज है दैन्य का अभ्यास करना। दैन्य मतलब दीनता। ईश्वरस्याप्य मान द्वेषत्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। ईश्वर को दैन्य प्रिय है और अभिमान से द्वेष है। अगर भगवान को जो है अपने भक्त में कुछ अभिमान दिखाई पड़ता है तो भगवान उसके अभिमान को दूर करते हैं, क्योंकि भगवान को दैन्य प्रिय है। तो दीनता का अभ्यास करना, दया, और दया भक्तों की दया क्या होती है, प्रचार। प्रचार के द्वारा भक्त लोग दया करते हैं, तो दया। और अन्य जीवों का आदर, दूसरे जीवों का आदर करना, है ना, यानी अपमान नहीं करना। और प्रतिष्ठा वर्जन, अपनी प्रतिष्ठा बहुत फैले, अपना नाम फैले, है ना, तो ये सब भावना नहीं होना चाहिए। ऐसी अवस्था में तुम्हें श्री कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। तो ये वही है जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाष्टकम अमान ना मान देने कीर्तन यहाँ सदा हरी। तो सदा हाँ कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए, रोदन करते हुए भक्ति विनोद प्रभु के चरण कमलों में ये प्रार्थना अर्पित करता है। हाँ ये भक्तों ठाकुर लिख रहे हैं। मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया है, जिसके पास मोबाइल हो उसको बंद कर दीजिए। मैंने बंद कर दिया। हाँ तो देखो गीत की अंतिम पंक्ति में क्या है कि रोदन करते हुए भक्ति विनोद प्रभु के चरण कमलों में प्रार्थना अर्पित करता है। यानी भक्ति विनोद स्वयं रोते हुए प्रभु के पद कमलों में यानी श्री चैतन्य के चरण कमलों में ये प्रार्थना अर्पित करता है, हे भगवान आप मुझे ये गुण कब प्रदान करेंगे। रोते हुए मतलब हमें रोना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर की शिक्षा क्या है कि हमें रोना चाहिए, ऐसे गुण प्राप्त करने के लिए हमें रोना चाहिए। कैसे गुण? दैन्य दया, अन्य जीवों का आदर, प्रतिष्ठा वर्जन, ये सब जो गुण हैं इनको पाने के लिए हमें रोना चाहिए। है तो जब हम रोते हैं कि कब मुझे ये मिलेगा, है ना, जैसे बच्चा रोता है मुझे कब ट्रॉफी मिलेगी, है ना, मुझे कब ये मिठाई मिलेगी, मुझे ये कपड़ा चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए, ये चाहिए, है तो वो रोता है। इसी प्रकार से हमें रोना चाहिए ऐसे गुणों, ऐसे गुण हमें कब मिलेंगे ना, रोते हैं। सर्वदा प्रतिक्षण श्री कृष्ण की प्रेम सेवा में अर्पित करने को आतुर ये एक नियमबद्ध और कठोर दैनिक कार्यक्रम का पालन करते थे। इनका जो है मतलब बड़ा कठोर नियम था और नियमबद्ध। इनके समय में घड़ी चलती थी। पहले तो घड़ी नहीं चलती थी, है ना, घड़ी नहीं चलती थी, तो बस वही समय होता था, दोपहर का समय, शाम का समय, कोई मतलब इतना समय का अंदाज नहीं होता था कि एक घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा में कितना अंतर है, ऐसे अंदाज नहीं चलता था समय का। लेकिन इनके समय में घड़ी चलती थी, तो हाथ की घड़ी नहीं होती थी। इनके पास एक घड़ी होती थी चेन की, यहाँ चेन लटकाई है और वो जेब के अंदर पड़ी रहती थी, तो जेब से बाहर निकालते थे और टाइम देखते फिर जेब के अंदर डाल लेते थे। इसमें भी असुविधा तो है, हैं, ऐसी घड़ी आपको अगर दी जाए आप नहीं लोगे, हैं, अभी तो क्या है ऐसे तुरंत टाइम देख लेते हैं, इधर सामने भी घड़ी है, मोबाइल में भी टाइम देख लेते हैं, तो अब टाइम देखने के लिए बहुत सुविधा है, समय देखने की बहुत सुविधा है। लेकिन वो घड़ी लटक रही है चेन में और जेब के अंदर से निकाल करके फिर देखना, फिर जेब में डालना, बार बार असुविधा है। लेकिन उस घड़ी के द्वारा भी जो है ये अपना जो दिन भर का जो नियम है इन्होंने बहुत कठोर बनाया था, बड़ा कठोर नियम था। अब देखिए कैसा नियम था कि हम कई बार पढ़ते हैं लेकिन जितनी बार पढ़ते हैं उतना ही जो है हमारा शुद्धिकरण होता है। तो सुनिए, मैं पूछूंगा आपसे, ध्यान से सुनिए। इनका जो है शुरुआत हुई है रात्रि की 8 बजे से, इसमें जो लिखा है रात्रि की 8 बजे से 10 बजे तक ये 2 घंटा विश्राम करते थे। 2 घंटा विश्राम रात में 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटा विश्राम, ठीक है। फिर रात्रि के 10 बजे से प्रातः के 4 बजे तक लिखने का कार्य करते हैं। कितना घंटा हुआ? 6 घंटा हुआ, रात के 10 बजे से रात के 4 बजे, क्योंकि इस समय सब लोग सोते हैं, रात के 10 से 4 बजे के बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करता। इनके घर में भी पत्नी हैं, बच्चे हैं, सब सो रहे हैं, तो बिल्कुल बिना किसी बाधा के ये काम अपना लिखने का कर देते हैं, है ना। फिर 4 बजे से 4:30 बजे तक विश्राम, कितना? आधा घंटा रेस्ट, तो 2 घंटा वो हुआ, आधा घंटा ही 2.5 घंटा का जो है विश्राम हुआ है इनका, अच्छा, 4:30 से 7 बजे तक नाम का जप कितना कितना हुआ? 2.5 घंटा, 2.5 घंटा नाम का जप करते थे ना, 7 बजे। फिर 7 से 7:30 बजे तक पत्राचार, पत्र लिखते थे, पत्रों के उत्तर देना। उन दिनों सब ये मोबाइल वगैरह नहीं था, टेलीफोन नहीं था, लेकिन वो डाक विभाग शुरू हो गया था, चिट्ठी डाल दो लेटर बॉक्स में तो पहुंच जाएगा जहां से आया। तो उनके पास चिट्ठियां आती थी और चिट्ठियों का जवाब भी ये भेजते थे, तो चिट्ठियां हाथ से लिखने का कार्य था। तो आधा घंटे जो है पत्राचार, पत्रों का उत्तर देना, 7:30 हो गए। फिर 7:30 से 9:30 बजे तक शास्त्रों का अध्ययन करते थे, केवल लेखन कार्य नहीं, अध्ययन भी चाहिए ना, शास्त्रों का अध्ययन भी चाहिए। अगर कोई केवल लिखता है और पढ़ता नहीं है तो फिर वो कुछ सही कुछ गलत होगा, है ना। तो लिखने के लिए अध्ययन की भी आवश्यकता है। तो कितना कितना घंटा हुआ अध्ययन? 2 घंटा, 7:30 से 9:30। अब 9:30 से 10 बजे आधा घंटा में स्नान भी और प्रसाद, आधा घंटे में स्नान और प्रसाद ले लेते हैं। प्रसाद में क्या था? आधा लीटर दूध, कुछ फल, 2 चपाती, इनका जो है ये प्रसाद था। फिर सवेरे कितना बज गया है? अभी कितना बज गया? 10 बज गया। तो 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक न्यायालय का कार्य, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम, ऑफिस में जाते थे, काम करते थे। कितना घंटा हुआ? 3 घंटा ऑफिस का काम कर रहे हैं। फिर 1 बजे से 2 बजे 1 घंटे में घर पर कुछ प्रसाद लेते थोड़ा और विश्राम करते। तो विश्राम आधा घंटा समझ लो, विश्राम का आधा घंटे में प्रसाद भी लेना और अपने पत्नी या बच्चों उनसे भी कुछ थोड़ा बातचीत करना। तो इस तरह से अब कितना बच गया? 2 बज गया। तो 2 बजे से 5 बजे तक फिर न्यायालय का कार्य है, ऑफिस का काम। कितने घंटे हुए? 3 घंटे। तो 3 घंटे ये और 3 घंटे पहले के, 6 घंटे ऑफिस का काम इनका। अब कितना बच गया? 5। 5 से 7 बजे संस्कृत शास्त्रों का बंगाली में अनुवाद, संस्कृत शास्त्रों का बंगाली भाषा में अनुवाद करना, ये 2 घंटा। फिर लेखन कार्य ही है, लिखना ही है एक प्रकार से, 2 घंटा लिखना। तो लिखने का कार्य कितना हो गया इनका? 8 घंटा, और आधा घंटा पत्राचार, 8.5 घंटा लिखने का कार्य हो गया, है ना। और फिर शाम को कितना बज गया? अभी 7 से 8 बजे तक स्नान और प्रसाद, उसमें भी आधा लीटर दूध, भात और 2 चपाती। फिर 8 बजे से फिर 8 से 10 तक फिर सोना, वो 24 घंटे का हो गया ना। तो 24 घंटे में निद्रा इनकी कितनी है? 3 घंटा, 3 घंटा निद्रा। और लेखन कार्य 8.5 घंटा, और जप और अध्ययन 2.5 घंटा, जप और अध्ययन 2 घंटा, तो 4.5 घंटा, और ऑफिस का काम 6 घंटा। तो ये जो है मतलब इतना इनका जो है मतलब डेली रूटीन, दैनिक कार्यक्रम। श्रीनिवास आचार्य वृंदावन के 6 गोस्वामियों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, नाना शास्त्र विचार रणे के निपुणों, सद्धर्म संस्थापको, लोका नाम हितकारिणो। कि 6 गोस्वामियों ने समस्त शास्त्रों का अध्ययन, गहन अध्ययन किया, जिससे वे साधारण जनता के हित के लिए शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों को स्थापित कर सकें। तो वही कार्य इनका भी है, भक्तिवर ठाकुर का भी वही कार्य है। अनेक अनेक शास्त्रों के द्वारा इन्होंने कृष्ण भावनामृत की विधि की स्थापना की। सामान्य व्यक्ति अनेक अनेक शास्त्रों को पढ़ता है तो भ्रमित हो जाता है और कृष्ण भावना मृत से वो विचलित हो जाता है और सोचता है अब तो ये दूसरा विषय है, तो दूसरा विषय है और अनेक विषयों में वो फंस जाता है ना। लेकिन ये जो छह गोस्वामी और ये सातवें भक्त विनोद ठाकुर ये अनेक अनेक शास्त्रों पर विचार करते हुए और सामान्य जनता को निष्कर्ष देते हैं, किसका? कृष्ण भावना मृत का निष्कर्ष दे देते हैं। सद्धर्म संस्थापको, तो छह गोस्वामियों के समान ठाकुर भक्ति विनोद ने भी मानवता की सहायता के लिए अपरिमित प्रचार कार्य किया, इस कारण इन्हें सातवां गोस्वामी कहा जाता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर के प्रचार कार्य की तीन प्रमुख उपलब्धियां हैं, उनकी तीन प्रमुख उपलब्धियां हैं। पहली क्या है? 100 इन्होंने ग्रंथों की रचना की, 100 ग्रंथों की रचना की पहली उपलब्धि। इनके लिखे ग्रंथ करीब 100 ग्रंथ हैं। दूसरा, श्री चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य स्थली की खोज की, बहुत बड़ा कार्य। कि चैतन्य महाप्रभु जब अपनी लीला समाप्त करके चले गए अपने धाम, तो उनका तो जन्म स्थान एक ही था, लेकिन फिर बीच में जब गंगा की धारा में वो जन्म स्थान लुप्त हो गया, तो उसमें फिर बहुत लोगों को मौका मिला और चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान घोषित करते हुए अनेक लोगों ने जो है अपने अपने स्थान जो है वो कर दिए, प्रचलित कर दिए। अब कोई व्यक्ति दर्शनार्थी जाए, भाई चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान कौन सा है, वो कहते ये है जन्म स्थान, इधर चढ़ाओ पैसा। दूसरा कहता है इधर पैसा चढ़ाओ, ये है जन्म स्थान। दर्शनार्थी जो है भ्रमित होते थे और सब लोग अपना व्यापार करते थे चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान को बता करके, भाई चढ़ाओ यहाँ है पैसे, पैसा चढ़ाओ यहाँ। भक्त ठाकुर ने फिर जो है जब असली जन्म स्थान का पता लगाया है ना, तो उन्होंने जो है अपने स्थान से जहाँ पर इन्होंने अपना जो है स्थान निवास स्थान बनाया था, अपने निवास स्थान से ये देखते थे दूर, तो जो चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान था वहाँ से प्रकाश निकलता था, प्रकाश निकलता था, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता था। फिर जब वहाँ गए तो वो स्थान मुसलमानों के अधिकार में था, लेकिन वहाँ कोई भी निर्माण कार्य नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पर जितने भी पेड़ थे तुलसी के ही पेड़ थे और कोई दूसरे पेड़ नहीं थे, और तुलसी के पेड़ की इतनी मान्यता थी कि मुसलमान लोग भी जो है तुलसी के पेड़ को उखाड़ते नहीं थे, कहीं तुलसी का पेड़ लगा है तो वो कुछ नहीं, मतलब तो उस स्थान में कोई भी निर्माण कार्य नहीं होता था। फिर वो जो स्थान था वो मायापुर, जो प्राचीन मायापुर का स्थान था, तो मुसलमानों ने जो है उसको मायापुर की जगह मियापुर ये नाम अपने मुसलमानी तरीके से उसका नामकरण कर दिया था, मियापुर। मियाँ तो मुसलमान होते हैं ना, मियाँ, तो मायापुर ये मियापुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने जो है बहुत से ऐसे जो है कारण पता लगाए कि असली जन्म स्थान यही है। तो ये सब, तो पहला, दूसरा, पहला तो योगदान इनका क्या है, 100 पुस्तकें लिखी हैं, और दूसरा योगदान श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान खोजा, योगपीठ, और तीसरा प्रचार में नव पद्धतियां प्रवर्तित की, नवीन पद्धतियां, नवीन पद्धतियां जैसे प्रिंटिंग, हाँ, किताबें छापना है। अब वो किताबें लिखने का जो है कार्य पहले का था है ना, तो उतने से अब पर्याप्त नहीं, कि माया का प्रचार इतना हो रहा है तो हमें कृष्ण के प्रचार के लिए भी वही विधि अपनानी पड़ेगी, किताबों की छपाई के द्वारा, किताबें छापो, किताबें छापना, नौ पद्धतियाँ, और भी बहुत से एडवर्टाइजमेंट के कई जो तरीके हैं, माया का हो रहा है तो क्यों ना कृष्ण के संदेश का किया जाए ना? तो जितने भी नए नए टेक्नोलॉजी आती है प्रचार के लिए, माया के प्रचार के लिए, उसी टेक्नोलॉजी को हम कृष्ण के संदेश के प्रचार में क्यों ना लगाएं, है ना? तो ये जो है इन्होंने प्रवर्तित की। रूम को समझने से ध्यान दिया, युक्त वैराग्य का तो रूम को समझने से ध्यान दिया, उसी सिद्धांत को इन्होंने कार्यान्वित किया, भक्तिन ठाकुर ने कार्यान्वित किया। जब भी आचार्यों को मौका मिलता है तो उस सिद्धांत का जो है वो प्रयोग करते हैं। तो तीन इनके जो है प्रमुख उपलब्धियां हैं। महाप्रभु के संदेश का वर्णन और उसमें रुचि उत्पन्न करने वाले ग्रंथों के अतिरिक्त इन्होंने अलौकिक भावों और शास्त्रीय सिद्धांतों से परिपूर्ण हजारों गीतों की भी रचना की। इनके हजारों गीत हैं, हजारों गीत हैं। कैसे हैं? शास्त्रीय सिद्धांतों से परिपूर्ण हैं और अलौकिक भाव हैं। अलौकिक भाव मतलब एक वैष्णव जो है अब भगवान के प्रति अपनी जो भावना प्रकट करता है ना, तो वो जो है उसमें गहराई है, उसमें गहराई है और शास्त्रीय सिद्धांत में है। नरोत्तम दास ठाकुर के गीत भी इसी प्रकार है ना, शास्त्र के सिद्धांत हैं और अलौकिक भाव हैं, भक्त के दीनता का भाव उसी प्रकार से इनके भी गीत हैं, दीनता के भाव में हैं और शास्त्रीय सिद्धांतों के अनुसार है ना। आजकल बहुत से लोग भजन बनाते हैं, भजन बनाते हैं लेकिन वो भजन में जो है वो शास्त्र के अनुसार वो होते नहीं हैं। अगर कुछ लीला भी लीला का भी वर्णन करना है तो उसमें बहुत से अपने जो है विचार उसमें डाल देते हैं और घटनाओं को बदल देते हैं, वो घटनाएं फिर उस तरह की नहीं होती। ये भक्तिवीर ठाकुर ने जो है कई घटनाओं का भी वर्णन किया है अपने भजन में, कई घटनाओं का वर्णन किया है अपने भजन में, लेकिन वो जो घटनाओं का वर्णन किया है वो यथावत किया है, जैसा शास्त्र में है उसी प्रकार से घटनाओं का वर्णन किया है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जहाँ कोई व्यक्ति कुछ ड्रामा बनाता है या कुछ गीत लिखता है तो उसमें फिर बहुत सी बातें अपनी तरफ से जोड़ देते हैं, लेकिन इनका ऐसा नहीं है, है ना, शास्त्रीय सिद्धांतों से परिपूर्ण है। इनके एक शिष्य ने कहा है कि भक्तिवीर ठाकुर की पुस्तकों ने चैतन्य महाप्रभु के पवित्र उपदेश को प्रत्येक आधुनिक पाठक के लिए पूर्णतया सुलभ बना दिया है और उन्हें एक ऐसे रूप में प्रस्तुत किया है जिसमें विश्वास और भक्ति बढ़ती है, इस तरह से प्रस्तुत किया है। अब इनकी पुस्तकों के कुछ नाम दिए गए हैं, इनको आप सुनिए। एक पुस्तक है इनकी श्री कृष्ण संहिता, दूसरी पुस्तक है कल्याण कल्पतरु, तीसरी श्री चैतन्य शिक्षामृत, चौथी श्री नवदीप धाम महात्म्य, पांचवी जैव धर्म, छठवीं श्री हरि नाम चिंतामणि, सातवीं भजन रहस्य, आठवीं गीतमाला, नवीं गीतावली, दसवीं शरणागति, ग्यारहवीं भगवद गीता भाष्य और तेरहवीं चैतन्य चरितामृत भाष्य। तो ये तो 13 नाम दिए, लेकिन 100 किताबें हैं इनकी, ये 13 नाम दिए हैं। गीतावली से इन्होंने, गीतावली में इन्होंने जो गीत लिखे हैं उनमें से एक का अनुवाद है, जो यत्न पूर्वक श्री राधिका के चरण कमल की आराधना नहीं करता, सुन रहे सब लोग, जो यत्न पूर्वक श्री राधिका के चरण कमल की आराधना नहीं करता और उनके चरण कमल से सुशोभित वृंदावन के शरण नहीं ग्रहण करता, जो अपने जीवन काल में राधा के भक्तों का संग नहीं करता, ऐसा व्यक्ति कृष्ण के आनंद रस का आस्वादन किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए, श्री राधिका उज्ज्वल रस की आचार्या हैं, राधा माधव का माधुर्य प्रेम ही विचार करने का विषय है, राधा माधव का माधुर्य प्रेम ही विचार करने का विषय है। कैसा विचार करने का? दिव्यता कि कितनी दिव्य है। जो यत्न पूर्वक श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है वो माधव के चरण रूपी अमूल्य रत्न प्राप्त कर लेता है। राधा के चरण कमलों के शरणागत हुए बिना व्यक्ति कभी भी श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। वैदिक साहित्य घोषित करता है कि श्री कृष्ण संपत्ति है राधा की दासियों की। श्री कृष्ण किसकी संपत्ति है? राधा की दासियों की। पत्नी, पुत्र, मित्र, धन, जन, कर्म और ज्ञान का त्याग कर दो, मात्र श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों की सेवा में लीन हो जाओ, भक्ति विनोद, यही घोषणा करते हैं। तो इसमें तो और भी बातें लिखी हैं भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में, तो हमने आज इतना ही पढ़ा है। शाम की भी अगर कक्षा होगी तो उसमें फिर आगे और पढ़ा जा सकता है। तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है जितनी हमने चर्चा की भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में? हाँ जी, है? शिक्षा परंपरा ऐसा है कि दोनों का महत्व है, शिक्षा का भी महत्व है और दीक्षा का भी महत्व है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो परंपरा बनाई है वो शिक्षा के आधार पर बनाई है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया, लेकिन दीक्षा के आधार पर भी परंपरा है। भक्ति विनोद ठाकुर के दीक्षा गुरु विपिन बिहारी गोस्वामी थे, लेकिन बाद में फिर विपिन बिहारी गोस्वामी जो है ब्राह्मण को जन्म के आधार पर ब्राह्मण को मानते थे, तो भक्ति विनोद ठाकुर तो मतलब उस आधार पर ब्राह्मण को नहीं मानते थे। तो वैसे तो त्याग नहीं किया कि भाई ऐसे कोई कुछ कहें कि, लेकिन उन्होंने जो है मतलब शिक्षा के आधार पर वो जो है सिद्धांत है, तो सिद्धांत का बहुत महत्व है। दीक्षा के आधार पर जो है अगर कुछ हमने नियम स्वीकार किए, मंत्र प्राप्त किया है और नियम का पालन किया है तो वो शुद्धिकरण के लिए तो है जरूरी, लेकिन सिद्धांत बहुत आवश्यक है कि सिद्धांत हमें जो है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शुद्धिकरण तो सिद्धांत से ही होता है ना। तो जब सिद्धांत हमें जो है मतलब अगर प्राप्त होता है परंपरा के द्वारा, जब तक नहीं प्राप्त होता है तब तक जो है शुद्धिकरण का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो दीक्षा जो है सहायक होती है, लेकिन शिक्षा ही मुख्य है, ठीक है ना। शिक्षा बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। हाँ जी,
आपने बताया कि
भाष्य का तात्पर्य होता है, इनका भाष्य अमृत प्रवाह है। भाष्य चैतन्य चरितामृत के जो बंगाली प्यारे हैं कृष्णदास कविराज ने लिखा है, हैं? तो उसका भाष्य का मतलब व्याख्या ही समझो, एक प्रकार की व्याख्या है, उसी को भाष्य बोलते हैं, ठीक है। अमृत प्रवाह है भाष्य इन्होंने लिखा है, ठीक है। और कोई? हाँ जी, हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है। इनका अच्छा प्रश्न है। भक्तों ठाकुर के पास कोई व्यक्ति दान मांगने आता था तो संतुष्ट होकर के जाता था। इसका मतलब ये भी है कि आप संतुष्ट कर सकते हैं उसको, अच्छे मधुर वचनों से संतुष्ट कर सकते हैं और उसको प्रसाद दे करके, प्रसाद खिला करके संतुष्ट कर सकते हैं। तो इस्कॉन की तरफ से भी जो है प्रसाद वितरण का जो कार्यक्रम है ये बहुत जो है व्यापक है और इससे लोग बहुत संतुष्ट हो रहे हैं, है ना। मिड डे मील भी जो है बहुत संतुष्ट कर रहा है, सरकार को भी संतुष्ट कर रहा है, बच्चों को जो है शुद्ध और पौष्टिक भोजन दे करके। तो उसे प्रसाद के नाम पर नहीं देते हैं, प्रसाद के नाम पर सरकार जो है मतलब कोई भी कार्यक्रम आपको कोई किसी कार्यक्रम की स्वीकृति नहीं देगी कि आप प्रसाद बांटेंगे। तो धर्म निरपेक्ष है ना, तो वो प्रसाद होता है, लेकिन बच्चों को जो है प्रसाद दिया जाता है, लेकिन वो स्वादिष्ट है, पौष्टिक है, केवल इस नाम पर जो है प्रसाद दिया जाता है, तो संतुष्ट हैं लोग, संतुष्ट हैं। तो अच्छे मधुर वचनों से भी किसी को संतुष्ट किया जा सकता है ना। प्रभुपाद के पास भी बहुत से विरोधी आते थे, है ना, तो वो तो मतलब झगड़ा करने के लिए आते थे, कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, कोई बात को काटते थे। तो प्रभुपाद के पास इतनी चतुराई थी कि उसकी बात का विरोध किए बिना बात की दिशा को ही बदल देते थे, कि मैं तो ये बात बोल रहा हूँ, तो वो संतुष्ट हो जाता था कि चलो मेरी बात को तो नहीं काट रहे, मेरी बात को नहीं काट रहे हैं, और प्रभुपाद जो है दूसरी बात की दिशा को बदल देते थे, संतुष्ट हो जाता था। तो भक्तों के पास जो है मतलब ये ऐसी विधि होती है कि वे किसी को भी संतुष्ट कर सकते हैं, है ना। हाँ जी, अठारह सौ 38 में, हाँ, कौन सा दिन? ये गदाधर पंडित का जो तिरुभा दिवस हमारे वैष्णव कैलेंडर में आता है, भक्तों ठाकुर है? हाँ, वो सब लिखा है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी हो सकता है वो, इसमें हाँ 1914 में, हमने तो पूरा पढ़ा नहीं इसमें से, ये आप पढ़ सकते हैं, गौड़ीय वैष्णव चरितामृत, तो ये सबको रखना चाहिए अपने पास, क्योंकि इसमें हमारे वैष्णव कैलेंडर में जो भी आविर्भाव तिरुभाव आते हैं तो करीब करीब सबका इसमें मिल जाता है, तो इससे जो है आपको कम से कम उन आचार्यों की कृपा आपको मिल सकती है, ये किताब इसलिए उपयोगी है। ठीक है, हाँ जी, हाँ, हाँ ये तो है, क्योंकि असत संग त्याग ए वैष्णव आचार, ये तो है कि अगर कोई व्यक्ति जो है विरोधी है और ईर्ष्यालु है, तो मध्यम अधिकारी जो प्रचार में लगा हुआ है उसके लिए जरूरी है कि वो उपेक्षा करें, उपेक्षा का मतलब उसके संग से दूर रहना। अब अगर हम विरोध करते हैं कटुता बढ़ती है ना, या फिर जो है तू तू मैं होता है, या मारपीट का अवसर आ जाता है, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, है ना। तो ज़्यादा अच्छा ये है, कहाँ कहीं पर जो है भक्त क्रोध भी करता है, और क्रोध से अगर वो जो विरोधी व्यक्ति है अगर वो समझ लेता है कि हाँ उसकी गलती है, तो क्रोध का भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपके क्रोध करने से वो भी क्रोध कर रहा है, और फिर उससे और ज़्यादा विरोध बढ़ रहा है, तो फिर क्रोध भी नहीं करना है, उपेक्षा करना है, है ना। तो ये सब बातें हैं प्रभुपाद के भी, प्रभुपाद लीलामृत में भी ये घटना अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, एकादशी को जब पाठ होता है तो उसमें ये था कि जो विरोधी लोग थे, प्रभुपाद जब बम्बई मंदिर में जो है समुद्र के किनारे सवेरे की सैर करने जाते थे, तो कुछ विरोधी लोग थे, वो जो है मानते नहीं थे, वो विरोध करते जाते थे, तो शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद ये लोग तो विरोध करते जाते हैं, तो प्रभुपाद ने कहा फिर हम लोग जो है इन लोगों से बात नहीं करेंगे, हम लोग केवल हरे कृष्ण मंत्र का ही केवल जप करेंगे, अब वो अगर आए तो हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो है कुछ न कुछ विधि अपनानी पड़ती है कि उनसे बातचीत ना हो, उनका संग ना हो, और अपने को जो है थोड़ा दूर रखा जाए, दूरी बनाई जाए, तो ये भी जरूरी होता है। कई बार जो है हमें विरोधी व्यक्ति से, ईर्ष्यालु व्यक्ति से दूरी बना के रखनी पड़ती है, ये भी बहुत जरूरी है। हाँ जी, हाँ नहीं, हमें निकल नहीं करना चाहिए, इतने महान आचार्यों की हमें नकल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर उस तरह का नहीं है। तो हमारे शरीर में कुछ ज़्यादा भौतिकता है, तो हमारे शरीर के लिए जितनी विश्राम की आवश्यकता है उतना विश्राम कम से कम हमें देना चाहिए। 6 घंटे की नींद हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर 6 घंटे की नींद भी अगर गहरी नहीं होती है तो फिर हमें ज़्यादा भी विश्राम करना पड़ता है। कई बार आप 2 घंटा सोए लेकिन वो गहरी नींद नहीं आई, तो वो 1 घंटे की ही नींद के बराबर हुआ है। 2 घंटा आपने विश्राम किया लेकिन वो 1 घंटे का ही हुआ, तो फिर आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आपको देखना है कि भाई कैसी मतलब स्थिति है, कि जिससे कि आपका जो है आपके शरीर की रक्षा हो सके। तो शरीर को नष्ट नहीं करना है ना, तो वे अपने शरीर की रक्षा करते थे और कम सो करके भी उनके शरीर की रक्षा हो रही थी, लेकिन आपके शरीर की रक्षा नहीं हो रही कम सोने से। तो आपको जो है शरीर की रक्षा के लिए उतना आवश्यक सोना ही चाहिए जितनी आवश्यकता है। तो शरीर की रक्षा को ध्यान में रखते हुए आप जो है कुछ नियम बनाइए। ऐसे नहीं कि नहीं नहीं हम तो नकल करेंगे, नकल नहीं कर सकते आप। और एक बात और है कि जितना आप भोजन करते हैं उसके आधार पर उसी अनुपात में आपको नींद की भी आवश्यकता पड़ती है। जब आप भोजन कम करते हैं तो फिर नींद की आवश्यकता भी कम होती है। जैसे बच्चा है तो बच्चा जो है अपने शरीर के हिसाब से ज़्यादा खाता है, तो वो फिर 20 घंटा भी सोता है। शरीर जैसे जैसे बड़ा होता है तो भोजन की मात्रा तो उसकी बढ़ जाती है, लेकिन शरीर के अनुपात में उसकी भोजन की मात्रा कम होती है, तो उस हिसाब से उसकी नींद कम होती जाती है। वृद्धावस्था में फिर भोजन की आवश्यकता और कम हो जाती है, तो उसमें फिर ज़्यादा मतलब जागा जा सकता है या कम सोया जा सकता है। तो वो अपने शरीर के अनुसार हमें पता लगाना चाहिए कि हमें कितना जो है विश्राम की आवश्यकता है और कितना हमें जो है जप करना है। ठीक है ना, अगर आपको क्लास में नींद आ रही है तो इसका मतलब है कि आपने ठीक से विश्राम नहीं किया, इसलिए आपको क्लास में नींद आ रही है। तो प्रभुपाद कहते थे कि फिर अपना विश्राम का जो है कुछ समय और ज़्यादा ले लो, भी क्लास में मत सो। इस तरह से क्लास में नींद आ रही है इसका मतलब पर्याप्त विश्राम नहीं किया आपने, इसलिए। तो ये सब विचार करने की बातें हैं, और अपने लिए हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि कैसे शरीर की भी रक्षा हो और साथ साथ हम जो है आध्यात्मिक लाभ भी उठा सकें। जैसे आपको आपके पास गाड़ी है ना, तो गाड़ी को भी जो है आप सुरक्षित रखिए, साथ साथ गाड़ी से काम भी लीजिए। ये नहीं कि गाड़ी की सुरक्षा में और गाड़ी की उसमें रिपेयर में ही आप दिन रात लगे रहते हैं और गाड़ी का कुछ काम फायदा नहीं उठाते। तो शरीर की है, कुछ लोग हैं शरीर को बनाने में लगे रहते हैं दिन रात, तो शरीर का जो है कुछ लाभ नहीं उठाते, भक्ति भजन का कुछ भी लाभ नहीं उठाते। तो शरीर से जो है आप भजन का भी अधिक से अधिक लाभ उठाइए, फिर साथ साथ उसका जो है मतलब जो आवश्यकता है वो भी पूरी करिए, जैसे कि अधिक से अधिक चल सके, है ना। ठीक है ना, और धन्यवाद। श्री भक्ति ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। जय।